ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंपाक गीता। शंपाक गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत आती है। इसमें पितामह भीष्म ने शंपाक नामक एक त्यागी ब्राह्मण के अनुभूत उपदेशों को उन्हीं के शब्दों में युधिष्ठिर को बताकर त्याग के लिए प्रेरित किया है। संसार में धनी हो अथवा निर्धन, सुख दुख प्रत्येक मनुष्य को होता है। त्याग के बिना न वास्तविक सुख मिलता है न ही परमात्मा। त्याग वृत्ति अपनाकर सुखी होने का उपदेश देने वाली यह शंपाक गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। युधिष्ठिर उवाच। धनिनश्चाधना ये च वर्तयन्ते स्वतंत्रिणः सुख दुःखागमस्तेषां कः कथं वा पितामह। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, धनी और निर्धन दोनों स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है? भीष्म उवाच। अत्राप्युदाहरन्ति ममेतिहासं पुरातनं शंपाकेनेह मुक्तेन गीतं शांतिगतेन च। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं जिसे परम शांत जीवन मुक्त शंपाक ने यहाँ कहा था। अब्रवीन माम पुरा कश्चिद ब्राह्मणस्त्यागमाश्रितः क्लिश्यमानः कुदारेण कुचैलेन बुभुक्षया। पहले की बात है, फटे पुराने वस्त्रों एवं अपनी दुष्टा स्त्री के और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले एक त्यागी ब्राह्मण ने, जिसका नाम शंपाक था, मुझसे इस प्रकार कहा। उत्पन्नी मिह लोके वै जन्म प्रभृति मानवम विविधान्युपवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, वह धनी हो या निर्धन, उसे जन्म से ही नाना प्रकार के सुख दुख प्राप्त होने लगते हैं। तयोरे कतरे मार्गे यदि नम भिसन्नयेत न सुखम प्राप्य संहृष्येन न सुखम प्राप्य संज्वरेत। विधाता यदि उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो और न दुख में पड़कर परितप्त हो। न वै चरसी यच्छ्रेय आत्मनो वा यदि शिषे अकामात्मापि ही सदा धुरमुद्दम्य चैवह। तुम जो कामना रहित होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे हो और मन को वश में नहीं कर रहे हो, इसका कारण यही है कि तुमने राज्य का बोझा अपने ऊपर उठा रखा है। अकिंचनः परिपतम सुखमास्वादयिष्यसि अकिंचनः सुखम शेते समुत्तिष्ठति चैवह। यदि तुम सब कुछ त्याग कर किसी वस्त्रों का संग्रह नहीं रखोगे तो सर्वत्र विचरते हुए सुख का ही अनुभव करोगे, क्योंकि जो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं रहता है, वह सुख से सोता और जागता है। आकिंचन्यम सुखम लोके पथ्यम शिव मनामयम अनमित्र पथो हेश दुर्लभ सुलभो मतः। संसार में अकिंचनता ही सुख है, वही हितकारक कल्याणकारी और निरापद है। इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है, यह दुर्लभ होने पर भी सुलभ है। अकिंचनस्य शुद्धस्य उपपन्नस्य सर्वतः अवेक्षमाण स्त्रीन लोकान न तुल्यमिह लक्ष्ये। मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अकिंचन शुद्ध एवं सब ओर से वैराग्य संपन्न पुरुष के समान दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। आकिंचन्यम च राज्यम च तुलया समतोलयम अत्यरिच्यत दारिद्र्यम राज्यादपि गुणाधिकम। मैंने अकिंचनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रखकर तोला तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता का ही पलड़ा भारी निकला। आकिंचन्ये च राज्ये च विशेषः सुमहानयम् नित्योद्विग्नो हि धनवान मृत्यु रास्यगतो यथा। अकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अंतर यह है कि धनी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता है मानो मौत के मुख में पड़ा हुआ हो। नैवास्यार्ग्निर्न चारिष्टो न मृत्युर्न च दस्यवः प्रभवन्ति धनत्यागाद विमुक्तस्य निराशिषः। परंतु जो मनुष्य धन को त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है और मन में किसी तरह की कामना नहीं रखता, उस पर न अग्नि का जोर चलता है, न अरिष्टकारी ग्रहों का, न मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकती है, न डाकू और लुटेरे ही। तम वै सदा काम चरमनुपस्तीर्ण शायनम बाहुपधानम शाम्यंतम प्रशसंती दिवैकसः। वह सदा दैव इच्छा के अनुसार विचरता है, बिना बिछौने के भूतल पर सोता है, बाहों का ही तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से रहता है। देवता लोग भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। धनवान क्रोध लोभाभ्यामाविष्टो नष्ट चेतनः तिर्यगीक्षः शुष्क मुखः पापको भ्रकुटी मुखः। जो धनवान है वह क्रोध और लोभ के आवेश में आकर अपनी विचार शक्ति को खो बैठता है, टेढ़ी आँखों से देखता है, उसका मुंह सूखा रहता है, भौहें चढ़ी रहती हैं और वह पाप में ही मग्न रहा करता है। निर्दशन्न धरोष्ठम च क्रुद्धो दारुण भाषिता कस्तमिच्छेत परिदृष्टुम दातुमिच्छति चेन्महीम। क्रोध के कारण वह ऊठ चबाता रहता है और अत्यंत कठोर वचन बोलता है। ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वी का राज्य ही दे देना चाहता हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा। श्रिया ह्यभीक्षणम संवासो मोह यत्य विचक्षणम सा तस्य चित्तम हरति शारदा भ्रमिवानिलः। सदा धन संपत्ति का सहवास मूर्ख मनुष्य के चित्त को लुभाकर उसे मोह में ही डाले रहता है, जैसे वायु शरद ऋतु के बालदलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार वह संपत्ति मनुष्य के मन को हर लेती है। अथैनम रूपमानश्च धनमानश्च विन्दति अभिजातो अस्मि सिद्धो अस्मि नास्मि केवल मानुषः। फिर उसके ऊपर रूप का अहंकार और धन का मद सवार हो जाता है और वह ऐसा मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। इत्येभिः कारणैस्तस्य त्रिभिश्चित्तं प्रमाद्यति संप्रसक्त मना भोगान विसृज्य पितृ संचितान परिक्षिणः परस्वाना मादानं साधु मन्यते। रूप धन और कुल इन तीनों के अभिमान के कारण उसके चित्त में प्रमाद भर जाता है। वह भोगों में आसक्त होकर बाप दादों के जोड़े हुए पैसों को खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरों के धन को हड़प लाना अच्छा मानने लगता है। तमति क्रांत मर्याद माददानम ततस्ततः प्रतिषेधंती राजानो लुब्धा मृगमि वेशुभिः। इस तरह मर्यादा का उल्लंघन करके जब वह इधर उधर से लूट खसोट कर धन ले आता है तब राजा उसे उसी प्रकार कठोर दंड देकर रोकते हैं जैसे व्याध बाणों से मारकर मृगों की गति रोक देते हैं। एवमेतानि दुःखानि तानि तानिह मानवं विविधान्युपपद्यन्ते गात्र संस्पर्श जान्यपि। इस प्रकार मन को तप्त करने वाले और शरीर के स्पर्श से होने वाले ये नाना प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तेषां परम दुःखानां बुद्धया भैष्यज्य माचरेत लोक धर्मम वज्ञाय ध्रुवाणाम ध्रुवैः सह। अतः अनित्य शरीरों के साथ सदैव लगे रहने वाले पुत्रैषणा आदि लोक धर्मों की अवहेलना करके अवश्य प्राप्त होने वाले पूर्वोक्त महान दुखों की विचार पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। ना त्यक्त्वा सुखमाप्नोति ना त्यक्त्वा विन्दते परम ना त्यक्त्वा चाभयः शेते त्यक्त्वा सर्वं सुखी भव। कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं पाता, त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पा सकता और त्याग किए बिना निर्भय सो नहीं सकता, इसलिए तुम भी सब कुछ त्याग कर सुखी हो जाओ। इत्येतद्धास्तिना पुरे ब्राह्मणे नोपवर्णितम शंपाकेन पुरा मह्यम तस्मात् त्यागः परो मतः। इस प्रकार पूर्व काल में शंपाक नामक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर में मुझसे त्याग की महिमा का वर्णन किया था। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि संपाक गीता संपूर्णा। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरित गीता। प्राचीन काल में हरित मुनि ने मुमुक्षु पुरुष के प्रधान कर्तव्यों से संबद्ध जो उपदेश दिए थे, उन्हीं का परिचय शरशय्या पर लेटे पितामह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया था। यह वर्णन महाभारत के शांति पर्व में प्राप्त है। इसी को हरित गीता कहते हैं। इस लघुकाय गीता में मुख्यतः सन्यासी के आचरण एवं कर्तव्यों का वर्णन है। इसकी भाषा अत्यंत सरल, सुबोध तथा सार गर्भित है। सन्यासियों के लिए प्रकाश स्तंभ सदृश यह हरित गीता यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। युधिष्ठिर उवाच। किं शीलः, किं समाचारः, किं विद्यः, किं परायणः, प्राप्नोति ब्रह्मणः स्थानं यत् परं प्रकृतेर्ध्रुवम्। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, प्रकृति से परे जो पर ब्रह्म का अविनाशी परम धाम है, उसे कैसे स्वभाव, किस तरह के आचरण, कैसी विद्या और किन कर्मों में तत्पर रहने वाला पुरुष प्राप्त कर सकता है। भीष्म उवाच। मोक्ष धर्मेषु निरतो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः प्राप्नोति परमं स्थानं यत् परं प्रकृतेर्ध्रुवम्। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो पुरुष मोक्ष धर्मों में तत्पर, मिताहारी और जितेंद्रिय होता है, वह उस प्रकृति से परे परब्रह्म परमात्मा का जो अविनाशी परम धाम है, उसे प्राप्त कर लेता है। अत्राप्युदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनं हरितेन पुरा गीतं तं निबोध युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, पूर्व काल में हरित मुनि ने जो ज्ञान का उपदेश किया है, इस विषय में विज्ञ पुरुष उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, उसे सुनो। स्वग्रहादभि निःसृत्य लाभे अलाभे समो मुनि समूह पोढ़ेशु कामेशु निरपेक्ष परिव्रजेत। मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि लाभ और हानि में समान भाव रखकर मुनि वृत्ति से रहे और भोगों के उपस्थित होने पर भी उनकी आकांक्षा से रहित हो अपने घर से निकलकर सन्यास ग्रहण कर ले। न चक्षुणा च मनसा न वाचा दूषयेदपि न प्रत्यक्षम परोक्षम वा दूषणम व्यहारेत क्वचित। न नेत्र से, न मन से और न वाणी से ही वह दूसरे के दोष देखे, सोचे या कहे। किसी के सामने या परोक्ष में पराये दोष की चर्चा कहीं न करे। न हिंसयात सर्वभूतानि मैत्रायण गतश्चरेत नेदम जीवितमासाद्य वैरम कुर्वीत केनचित। समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा न करे, किसी को भी पीड़ा न दे, सबके प्रति मित्र भाव रखकर विचरता रहे। इस नश्वर जीवन को लेकर किसी के साथ शत्रुता न करे। अतिवादांस्ति तीक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रेम ब्रूयादाकृष्टः कुशलं वदेत। यदि कोई अपने प्रति अमर्यादित बात कहे, निंदा या कटु वचन सुनाए, तो उसके उन वचनों को चुपचाप सहले। किसी के प्रति अहंकार या घमंड न प्रकट करे। कोई क्रोध करे तो भी उससे प्रिय वचन ही बोले। यदि कोई गालू दे तो भी उसके प्रति हितकर वचन ही मुंह से निकाले। प्रदक्षिणम च सव्यम च ग्राम मध्ये न नाचरेत भैक्षचर्या मनापन्नो न गच्छेत पूर्व केतितः। गांव या समुदाय में दाएं बाएं न करे, किसी का पक्ष विपक्ष न करे तथा भिक्षावृत्ति को छोड़कर किसी के यहाँ पहले से निमंत्रित होकर भोजन के लिए न जाए। अवकीर्णः सुगुप्तश्च न वाचा ह्य प्रिय वदेत मृदुः स्याद प्रतिक्रूरो विश्रब्दः स्याद कथनः। कोई अपने ऊपर धूल या कीचड़ फेंके तो मुमुक्षु पुरुष उससे आत्मरक्षा मात्र करे, बदले में स्वयं भी वैसा ही न करे और न मुंह से कोई अप्रिय वचन ही निकाले। सर्वदा मृदुता का बर्ताव करे, किसी के प्रति कठोरता न करे, निश्चिंत रहे और बहुत बड़बड़ कर बातें न बनाए। विधु में न्यस्त मुसले व्यंगारे भुक्तवंजने अतीत पात्र संचारे भिक्षाम लिप्सेत वही मुनि हैं। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, अनाज मसाला कूटने के लिए उठाया हुआ मूसल अलग रख दिया जाए, चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाए, घर के लोग भोजन कर चुके हों और बर्तनों का संचार रसोई परोसी हुई थाली का इधर उधर ले जाया जाना बंद हो जाए, उस समय सन्यासी मुनि को भिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। प्राण यात्रक मात्र स्यान मात्रा लाभेश्व नाद्रतः अलाभे न विहन्येत लाभश्चैनम न हर्षयेत। उसे केवल अपनी प्राण यात्रा के निर्वाह मात्र का यत्न करना चाहिए, भरपेट भोजन मिल जाए इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यदि भिक्षा न मिले तो उसके मन में पीड़ा का अनुभव न करे और मिल जाए तो उसके कारण वह हर्षित न हो। लाभम साधारणम नैच्छेन्न भुंजिताभिपूजितः अभिपूजित लाभम ही जुगुप्से तैव तादृशः। साधारण लौकिक लाभ की इच्छा न करे, जहाँ विशेष आदर एवं पूजा होती है वहाँ भोजन न करे। मुमुक्षु पुरुष को आदर सत्कार के लाभ की तो निंदा करनी चाहिए। न चान्न दोषान निंदेत न गुणान पूजयेत श्रेयासने विविक्ते च नित्यमेवा भी पूजयेत। भिक्षा में मिले हुए अन्न के दोष बताकर उनकी निंदा न करे और न उसके गुण बताकर उन गुणों की ही प्रशंसा ही करे। सोने और बैठने के लिए सदा एकांत का ही आदर करे। शून्यागारम वृक्ष मूल मरण्यम थवा गुहाम अज्ञातचर्याम गत्वान्याम तत्तो अन्यत्रैव संविशेत। सूने घर, वृक्ष की जड़, जंगल अथवा पर्वत की गुफा में अथवा अन्य किसी गुप्त स्थान में अज्ञात भाव से रहकर आत्मचिंतन में ही लगा रहे। अनुरोध विरोधाभ्याम समह स्याद चलो ध्रुवः सुकृतम दुष्कृतम चोभे नानुरुध्येत कर्मणा। लोगों के अनुरोध या विरोध करने पर भी सदा सम भाव से रहे, निश्चल एवं स्थिर चित्त हो जाए तथा अपने कर्मों द्वारा पुण्य एवं पाप का अनुसरण न करे। नित्य तृप्तः सुसंतुष्टः प्रसन्न वदनेन्द्रियः विभीर जप्य परो मौनी वैराग्यम समुपाश्रितः। सर्वदा तृप्त और संतुष्ट रहे, मुख और इंद्रियों को प्रसन्न रखे, भय को पास न आने दे, प्रणव आदि का जप करता रहे तथा वैराग्य का आश्रय ले मौन रहे। अभ्यस्तम भौतिकम पश्यन भूतानामा गतिम गतिम निस्प्रह समदर्शी च पक्वा पक्वेन वर्तयन। आत्मना यह प्रशांत आत्मा लग्वाहारो जितेंद्रिय। भौतिक देह इंद्रिय आदि सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं और प्राणियों के आवागमन जन्म और मरण बारंबार होते रहते हैं। यह सब देख और सोचकर जो सर्वत्र निस्प्रह तथा समदर्शी हो गया है, पके भात रोटी आदि और कच्चे फल मूल आदि से जीवन निर्वाह करता है, आत्मलाभ के लिए जो शांत चित्त हो गया है तथा जो मिताहारी और जितेंद्रिय है, वही वास्तव में सन्यासी कहलाने योग्य है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम हिंसा वेग मुदरोपवस्थ वेगम एतान वेगान विषहेद वही तपस्वी निंदा चास्य हृदय नोपहन्यात। सन्यासी तपस्वी होकर वाणी मन क्रोध हिंसा उदर और उपस्थ इनके वेगों को सहता हुआ इन्हें वश में रखे, दूसरों द्वारा की हुई निंदा उसके हृदय में कोई विकार न उत्पन्न करे। मध्यस्थ एव तिष्ठेत प्रशंसा निंदयोः समः एतत् पवित्रं परमं परिव्राजक आश्रमे। प्रशंसा और निंदा दोनों में समान भाव रखकर उदासीन ही रहना चाहिए। संन्यासाश्रम में इस प्रकार का आचरण परम पवित्र माना गया है। महात्मा सर्वतो दान्तः सर्वत्रैवान पाश्रितः अपूर्वचारकः सौम्यो अनेकेतः समाहितः। सन्यासी को महामनस्वी सब प्रकार से जितेंद्रिय सब ओर से असंग सौम्य, मठ और कुटिया से रहित तथा एकाग्र चित्त होना चाहिए। उसे अपने पूर्व आश्रमों के परिचित स्थानों में नहीं विचरना चाहिए। वानप्रस्थ गृहस्थाभ्याम न संसृज्येत करहिचित, अज्ञात लिप्सम लिप्सेत न चैनम हर्ष आविशेत। वानप्रस्थों और गृहस्थों के साथ उसे कभी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। अपनी रुचि प्रकट किए बिना ही जो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी को लेने की इच्छा रखनी चाहिए, तथा अभीष्ट वस्तु के मिलने पर उसके मन में हर्ष का आवेश नहीं होना चाहिए। विजानताम मोक्ष एष श्रम स्याद विजानताम मोक्षया नमिदम कृत्स्नम विदुषाम हारितो अब्रवीत। यह संन्यासाश्रम ज्ञानियों के लिए तो मोक्ष रूप है, परंतु अज्ञानियों के लिए श्रम रूप ही है। हारित मुनि ने विद्वानों के लिए इस संपूर्ण धर्म को मोक्ष का विमान बताया है। अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा यह प्रव्रजेद ग्रहात् लोकास्ते जो मयास्तस्य तथान्नन्त्याय कल्पते। जो पुरुष सबको अभय दान देकर घर से निकल जाता है उसे तेजोमय लोकों की प्राप्ति होती है, तथा वह अनंत परमात्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि हारित गीता संपूर्णा। जय श्री राम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काम गीता महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर संवाद के रूप में काम गीता प्राप्त है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने काम प्रोक्त एक प्राचीन गाथा का वर्णन किया है, जिसमें बाह्य पदार्थों के त्याग के स्थान पर उनमें ममत्व के त्याग को ही वास्तविक त्याग बताया गया है, जो महान भय से छुटकारा दिलाने वाला है। अत्यंत लघु कलेवर वाली यह काम गीता यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। वासुदेव उवाच, न बाह्यम द्रव्यमुत्सृज्य सिद्धिर्भवति भारत, शारीरम द्रव्यमुत्सृज्य सिद्धिर्भवति वानवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भारत, केवल राज्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करने से ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती, शारीरिक द्रव्य का त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त होती है अथवा नहीं भी होती। बाह्य द्रव्य विमुक्तस्य शारीरेषु च ग्रद्धयत यो धर्मो यत सुखम चैव द्वेषतामस्तु ततः तथा। बाह्य पदार्थों से अलग होकर भी जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त है उसे जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है वह तुम्हारे साथ द्वेष करने वालों को ही प्राप्त हो। द्वयक्षरस्तु भवेन मृत्युस्त्रयक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च भवेन मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम। मम, मेरा, ये दो अक्षर ही मृत्यु रूप हैं और न मम, मेरा नहीं है। यह तीन अक्षरों का पद सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है। ममता मृत्यु है और उसका त्याग सनातन अमरत्व है। ब्रह्म मृत्यु ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितौ अदृश्यमानो भूतानि योधयेताम संशयम्। राजन, इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों अपने भीतर ही स्थित हैं। ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियों को लड़ाते हैं, अर्थात किसी को अपना मानना और किसी को अपना न मानना, यह भाव ही युद्ध का कारण है, इसमें संशय नहीं है। अविनाशो अस्य सत्वस्य नियतो यदि भारत भित्वा शरीरम भूतानाम हिंसां प्रतिपद्यते। भरत नंदन, यदि इस जगत की सत्ता का विनाश न होना ही निश्चित हो तब तो प्राणियों के शरीर का भेदन करके भी मनुष्य अहिंसा का ही फल प्राप्त करेगा। लब्ध्वा हि पृथ्वीं कृत्स्नां सह स्थावर जंगमां ममत्वं यस्य नैव स्यात् किं तया स करिष्यति। चराचर प्राणियों सहित समूची पृथ्वी को पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती वह उसको लेकर क्या करेगा, अर्थात उस संपत्ति से उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता। अथवा वसतः पार्थ वने वन्येन जीवतः ममता यस्य द्रव्येषु मृत्यु यो रास्येस वर्तते। किंतु कुंती नंदन, जो वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीवन निर्वाह करता है उसकी भी यदि द्रव्यों में ममता है तो वह मौत के मुख में ही विद्यमान है। बाह्यंतराणाम शत्रुणाम स्वभाव पश्य भारत यन्न पश्यति तद्भूतम मुच्यते स महाभयात। भारत, बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभाव को देखिए और समझिए, ये मायामय होने के कारण मिथ्या हैं, ऐसा निश्चय कीजिए। जो मायिक पदार्थों को ममत्व की दृष्टि से नहीं देखता वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। कामात्मानम न प्रशंसन्ति लोके नेहा कामा काचिदस्ति प्रवृत्तिः सर्वे कामा मनसु अंग प्रभुता यान पंडितः संघरते विचिन्त्य। जिसका मन कामनाओं में आसक्त है उसकी संसार के लोग प्रशंसा नहीं करते। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त कामनाएं मन से ही प्रकट होती हैं। विद्वान पुरुष कामनाओं को दुख का कारण मानकर उनका परित्याग कर देते हैं। भूयो भूयो जन्मनो अभ्यास योगाद योगी योगम सार मार्गम विचिन्त्य दानम च वेदाध्ययनम तपश्च काम्यानि कर्माणि च वैदिकानि व्रतम यज्ञान नियमान ध्यान योगान कामेन यो नारभते विदित्वा यद यच्चायम कामयते स धर्मो नयो धर्मो नयमस्तस्य मूलम्। योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालता है। जो इस बात को जानता है वह दान वेदाध्ययन तप वेदोक्त कर्म व्रत यज्ञ नियम और ध्यान योग आदि का कामना पूर्वक अनुष्ठान नहीं करना करता तथा जिस कर्म से वह कुछ कामना रखता है वह धर्म नहीं है। वास्तव में कामनाओं का निग्रह ही धर्म है और वही मोक्ष का मूल है। अत्र गाथाः कामगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः शृणु संकीर्त्यमानास्ता अखिलेन युधिष्ठिरः नाहं शक्यो अनुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्। युधिष्ठिर, इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार विद्वान एक पुरातन गाथा का वर्णन किया करते हैं जो कामगीता कहलाती है, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए, काम का कहना है कि कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय यानी निर्ममता और योगाभ्यास का आश्रय लिए बिना मेरा नाश नहीं कर सकता। यो माम प्रयतते हन्तुम ज्ञात्वा प्रहरणे बलम तस्य तस्मिन् प्रहरणे पुनः प्रादुर्वाम्यहम्। जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है उसके उस अस्त्र बल में मैं अभिमान रूप से पुनः प्रकट हो जाता हूँ। यो माम प्रयतते हन्तुम यज्ञैः विविध दक्षिणैः जंगमेष्वेव धर्मात्मा पुनः प्रादुर्वाम्यहम्। जो नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का यत्न करता है उसके चित्त में मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँ जैसे उत्तम जंगम योनियों में धर्मात्मा। यो माम प्रयतते नित्यं वेदैः वेदांत साधनैः स्थावरेष्वेव भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यहम्। जो वेद और वेदांत के स्वाध्याय रूप साधनों के द्वारा मुझे मिटा देने का सदा प्रयास करता है उसके मन में मैं स्थावर प्राणियों में जीवात्मा की भांति प्रकट होता हूँ। यो माम प्रयतते हन्तुम धृत्या सत्य पराक्रमः भावो भवामि तस्याहं सच माम नाव बुध्यते। जो सत्य पराक्रमी मनुष्य धैर्य के बल से मुझे नष्ट करने की चेष्टा करता है उसके मानसिक भावों के साथ मैं इतना घुलमिल जाता हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता। यो माम प्रयतते हन्तुम तपसा संशित व्रतः ततस्तपसी यतस्यात् पुनः प्रादुर्भवाम्यहम्। जो कठोर व्रत का पालन करने वाला मनुष्य तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटा डालने का प्रयास करता है उसकी तपस्या में ही मैं प्रकट हो जाता हूँ। यो माम प्रयतते हन्तु मोक्षमास्थाय पंडितः तस्य मोक्षरतिस्थस्य नृत्यामि च हसामि च अवध्यः सर्वभूतानाम हमेकः सनातनः। जो विद्वान पुरुष मोक्ष का सहारा लेकर मेरे विनाश का प्रयत्न करता है, उसकी जो मोक्ष विषयक आसक्ति है उसी से वह बंधा हुआ है, यह विचार कर मुझे उस पर हंसी आती है और मैं खुशी के मारे नाचने लगता हूँ। एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियों के लिए अवध्य एवं सदा रहने वाला हूँ। तस्मात् त्वमपि तम कामम यज्ञैः विविध दक्षिणैः धर्मे कुरु महाराज तत्र ते स भविष्यति। अतः महाराज, आप भी नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा अपनी उस कामना को धर्म में लगा दीजिए, वह आपकी वह कामना सफल होगी। यजस्व बजी मेधेन विधिवद दक्षिणावता अन्यैश्च विविधैः यज्ञैः समृद्धैराप्त दक्षिणैः माते व्यथास्तु निहतान बंधून वीक्ष पुनः पुनः न शक्यास्ते पुनर्द्रष्टुम ये हता अस्मिन् रणाजिरे। विधि पूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेध का तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले अन्य अन्य समृद्धिशाली यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। अपने मारे गए भाई बंधुओं को बारंबार याद करके आपके मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। इस समरांगण में जिनका वध हुआ है उन्हें आप फिर नहीं देख सकते। सत्वमिष्ट्वा महायज्ञैः समृद्धैराप्त दक्षिणैः कीर्तिम लोके पराम प्राप्य गतिम मृग्याम गमिष्यसि। इसलिए आप पर्याप्त दक्षिणा वाले समृद्धिशाली महायज्ञों का अनुष्ठान करके इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति प्राप्त करेंगे। इति श्री महाभारते अश्वमेधिके पर्वणि कृष्ण धर्मराज संवादे कामगीता संपूर्णा। जय श्री राम।